ओम शांति। अभी हम सुनेंगे एकाग्रता से एकरस स्थिति, तो उस टॉपिक पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच पहुंचे हैं हमारे आदरणीय मीठी पैरी कमलेश बहन जी। आपके जीवन की धारणाएं अमूल्य हैं, आपका विशेष रोल है, भाग्यशाली परिवार है, बाल्यकाल से ही इस ज्ञान से जुड़े, भक्ति, भक्ति के बाद ज्ञान। आपका जन्म, आपकी पढ़ाई, आपका आध्यात्मिक जीवन सारा ही दिल्ली राजधानी में चला। दिल्ली राजधानी हमारे यज्ञ के आदि रत्नों ने वहाँ दिल्ली को सींचा है, तो आदि रतन दादियों की विशेष पालना आपके परिवार को मिली है। और आप तीन बहनें बाबा के कार्य में समर्पित हैं, 57 साल से आप ईश्वरीय विद्यालय से जुड़ी हैं, इस संस्था से जुड़ी हैं, तब से लेकर के आप बाल्यकाल से ही आध्यात्मिकता आपके जीवन में रग रग में समाई, सारे दादियों की पालना मिली। खास करके आप तीनों बहनों को हमारे यज्ञ के वरिष्ठ प्रदाजी जगदीश भाई जी की पालना मिली है, उनकी पालना में पले बढ़े आप लोगों ने बहुत ही। तीनों बहनों से मैं परिचित बहुत अच्छे से हूँ। आपकी बड़ी दीदी सुधा दीदी जो मास्को रशिया में रहती है, मास्को में वहाँ के सेवा करने के आप निमित्त बनी हैं, और कमलेश बहन वर्तमान में दिल्ली राजधानी से देश की आर्थिक नगरी में सेवाएं दे रही हैं, अनेक प्रकार की आप सेवाएं करती रहती हैं। अगर वो लंबा अगर मैं लिस्ट सुनाती रहूं तो आपका समय जाएगा, परंतु आपसे हम अभी सुनेंगे एकाग्रता से एक रस स्थिति बनाने की विधि। आदरणीय कमलेश बहन जी,
थैंक यू। ओम शांति। मधुबन में आना, यूं तो मधुबन शांतिवन भी है, मधुबन मानसरोवर भी है, ज्ञान सरोवर भी है, लेकिन मधुबन पांडव भवन में आना, अपने भाग्य का दरवाजा खोलना है ना। बहुत कम को ये भाग्य प्राप्त होता है, एक एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है। तो बात चल रही थी कि मधुबन में आना तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो हमें मिलती है, उसका फायदा उठाना, क्योंकि बहुत इजीली हम सूक्ष्म वतन और मूल वतन का यहाँ अनुभव कर सकते हैं। और साकार में रहते हुए कैसे मुझे चलते फिरते कर्म करते, खाना भी कर्म है, सोना भी कर्म है, कैसे मुझे उस स्थिति को बनाना है, उसका अभ्यास भी हमारे लिए सहज ही हो जाता है। तो वो भाग्य तो आप सबको मिला। तो अभी जो आपकी ये भर्ती चल रही है, इसमें अनेक विषय के द्वारा स्पष्ट किया जाता है। तो ये जो विषय है एकाग्रता के द्वारा, एकाग्रता से एक रस स्थिति प्राप्त करना, तो विचार चल रहा था कि योगी जीवन के लिए एकाग्रता बहुत जरूरी है। वास्तव में हम साधक हैं। साधना की जाती है किसी ध्येय को प्राप्त करने के लिए, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और हम बीकेस का एकाग्रता के बिना योगी जीवन हो ही नहीं सकता है। हमारा योग लग ही नहीं सकता है। बाबा संकल्पों की सिद्धि की बात करते हैं, संकल्प द्वारा सिद्धि। वो सिद्धि कब प्राप्त होगी? जब हमारे संकल्पों में एकाग्रता होगी। आप देखते हैं दुनिया में लोगों ने, बड़े बड़े जो साइंटिस्ट बने, उन्होंने जो इन्वेंशंस की, जो आविष्कार किए, उसका जो बेसिस था, उसका जो आधार था, वो एकाग्रता की शक्ति रही। बड़े बड़े सिद्धि, बड़े बड़े महान पुरुषों ने सिद्धियां प्राप्त की, उसका भी जो बेसिस था, उसका भी आधार जो रहा, वो भी रहा एकाग्रता की शक्ति। क्योंकि एकाग्रता से ही सुख शांति का, जो आंतरिक सुख शांति कहते हैं, उसका हमें अनुभव हो सकता है। देखिए, ऐसे कोई हमारे पास सेवा केंद्र पर आते हैं, नए नए आते हैं, आके सेवा केंद्र देखते हैं, बाबा का कमरा देखते हैं, उसमें 2 मिनट हम उनको बिठाते हैं, तो उनका यही कहना होता है बड़ी शांति मिली, बड़ा अच्छा लगा। मीन्स वो तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि वातावरण ऐसा क्रिएट हुआ हुआ है। लेकिन जिसको वो गहन सुख शांति कहते हैं, जिसको वो आंतरिक शांति कहते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टेज ऑफ बीइंग क्वाइट, मैं बिल्कुल जैसे उस शांति की अवस्था में हूं। और वो शांति कैसी है? वो आनंदमय शांति है, वो शक्तिमय शांति है। वो केवल शांति नहीं है, उस शांति में शक्ति भी है, उस शांति में आनंद भी है। उस आंतरिक सुख शांति का अनुभव तभी होता है जब हम एकाग्रता की स्थिति में रहते हैं, एकाग्र होते हैं, एकाग्रता की शक्ति हमारे पास होती है। बाबा हमेशा हमें कहते हैं कि बच्चे सकाश दो, योग का दान दो। कहते हैं ना, हम कभी योग दान देते हैं, शांति का दान दो। आप सोचें, हम सकाश तब तक नहीं दे सकेंगे जब तक मन और बुद्धि एकाग्र नहीं होगा। अभी रिसेंटली बाबा का जो एक होमवर्क था कि सुख शांति खुशी सहयोग, ये संडे की बाबा की जो मुरली है, जिसमें बाबा ने कहा है सुख शांति खुशी सहयोग के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। अब आप सोचो, अगर मन और बुद्धि एकाग्र नहीं होगी तो हम कैसे वो वाइब्रेशंस, वो सकाश हम दूसरों को दे सकेंगे? तो कहने का भाव ये है, इस कॉन्सेंट्रेशन पावर के, इस एकाग्रता की शक्ति के क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या फायदे होते हैं, वो हम सबको मालूम है। यदि मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे बहुत सारे फायदे इसके सुना देंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल जीवन में हम अनुभवी हैं। तो सवाल ये उठता है कि एकाग्रता है क्या? दुनिया में इसके कई मिसाल दिए जाते हैं और हम सब ने पढ़े हुए हैं, सुने हुए हैं। जैसे वो अर्जुन और वो चिड़िया की आंख का मिसाल देते हैं। आपने वो भी मिसाल शायद सुना होगा, जो ये एक इंजीनियर हुए, इंजीनियर विश्वेश्वरिया, जिनके नाम पर इंजीनियर्स डे मनाया जाता है 15 सितंबर। कहते हैं कि जब वो ट्रेन में सफर कर रहे थे तो वो इंडियन थे, बाकी तो सब ब्रिटिशर्स का राज्य था ना उस समय, तो उसने कहा कि ट्रेन रोको, ट्रेन रोको, और कह के उसने एकदम से जंजीर खींच दी ट्रेन की और गाड़ी तो रुक गई। तो सबने कहा कि तुमने क्यों जंजीर खींच दी, तुमको जेल हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। तो तो उसने कहा तुम जाके देखो पहले कि आगे जो ट्रेन की पटरी है उसको क्या हुआ है, पहले आगे जाके देखो। तो देखा आगे जो ट्रेन की पटरी थी वो टूटी हुई थी, यानी उसने इतने लोगों को बचा लिया। तो सारे जो ब्रिटिशर्स थे उसको उन्होंने ये सवाल पूछा कि तुमको कैसे पता लगा, तुम भी तो ट्रेन में सफर कर रहा था, तुमको कैसे मालूम पड़ा कि आगे ट्रेन की पटरी जो है वो टूटी हुई है। तो उसने कहा कि मेरा इतना कॉन्सेंट्रेशन था, मैं भी सफर कर रहा था, ट्रेन और ट्रेन के पटरी के जो मूवमेंट्स जो थे उससे मुझे मालूम पड़ा कि आगे जो है ट्रेन की पटरी जो है टूटी हुई है। आप सोचिए ये फैक्ट है। तो एकाग्रता की शक्ति जो बाबा हमें कहते हैं, हमारे पास तो वो आध्यात्मिक लेवल की उच्च स्तर की एकाग्रता है, जहां मन और बुद्धि बिल्कुल एकाग्र हो जाते हैं और जिसका बेसिस है बाबा का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। तो आप सोचो उस एकाग्रता की शक्ति से हम क्या नहीं कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो एकाग्रता किसको कहते हैं, उसकी भी आप परिभाषित करना चाहेंगे तो बहुत सी परिभाषाएं हम दे सकते हैं, लेकिन मैं बाबा की अव्यक्त मुरलियों के आधार से आपको बताना चाहूंगी कि बाबा ने एकाग्रता किसको कहा है। विभिन्न अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने एकाग्रता को डिफाइन किया है और उसमें बाबा ने कहा है एक ही संकल्प में टिक जाना, वो है एकाग्रता। एक की लगन में मगन, एक ही पावरफुल स्थिति में अपनी मन बुद्धि को स्थित करना, एक ही पावरफुल स्थिति में अपनी मन बुद्धि को स्थित करना एकाग्रता है। फिर बाबा ने कहा है एक की याद में रहना, और फिर बाबा ने एक मुरली में कहा है एक बाप के साथ सदा बुद्धि लगी रहे, एक बाप के साथ सदा बुद्धि लगी रहे। ये बाबा ने अलग अलग अव्यक्त मुरलियों में अलग अलग परिभाषाएं बताई हैं। अब जैसे मान लीजिए हम मुरली सुन रहे हैं, सुबह हम सब मुरली सुनते हैं सेंटर पर जाके, जब हम मुरली सुनते हैं तो मुरली सुनते क्या मेरी वो एकाग्रता बनी रहती है, कहीं भी बुद्धि इधर उधर ना जाए, कोई दूसरा थॉट ना आए। अब आप सोचिए मैं मुरली सुन रही हूं, मुरली में एक पॉइंट बाबा ने बड़ी अच्छी कही, मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे अपील हुई एकदम से, मुझे लगा बाबा ने बाबा की आज ये बात बड़ी अच्छी है। और इमीडिएटली मुझे नेक्स्ट थॉट आता है ये बात ना उसके साथ जाके शेयर करनी चाहिए, किसी के साथ शेयर करनी चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल क्या है, 100% है या 100% से कम है? क्योंकि उस समय तो चाहे वो व्यक्ति ज्ञानी तो आत्मा है, चाहे वो बीके है, वो बहुत अच्छा है, पर स्टिल बुद्धि में उस व्यक्ति का ख्याल तो आया ना। तो आप सोचिए हमारी एकाग्रता कितनी होनी चाहिए, एक टिक, बस हम वो बाबा की मुरली सुन रहे हैं, बुद्धि कहीं भी इधर उधर ना जाए। और यदि हम अपने मन और बुद्धि को देखते हैं, आप सभी भी चेक कर लेना जब कल मुरली सुनेंगे ना, एंड स्पेशली जब वहां जाके अपने अपने स्थानों पर जाके मुरली सुनेंगे ना, तब चेक करना मुरली सुनते वक्त बुद्धि कहां कहां जाती है, क्या मेरा मन और बुद्धि उस समय एकाग्र होता है। तो लिसनिंग के समय, सुनने के वक्त भी तो मुझे एकाग्रता चाहिए। यूं तो आप देखिए कोई भी कार्य करते वक्त एकाग्रता चाहिए, लेकिन लेवल जो होता है, जो स्तर होता है एकाग्रता का, वो डिफरेंट होता है। मान लीजिए हम खाना बनाते हैं, खाना बनाते वक्त भी मुझे एकाग्रता की शक्ति की जरूरत होती है, नहीं तो नमक ज्यादा पड़ जाएगा, सब्जी जल जाएगी, पता ही नहीं लगेगा, फिर क्या कहेंगे हम तो योग में बैठे थे। बाबा ने एक बार कहा था अगर किसी का हाथ कट गया तो बाबा ने कहा बच्ची योग में नहीं थी, सब्जी काटते काटते हाथ कट गया, बच्ची योग में नहीं थी, अगर योग में होती तो हाथ नहीं कटता। तो उसमें भी हमें एकाग्रता चाहिए, लेकिन हम किस एकाग्रता की बात कर रहे हैं, जहां मेरी स्थिति एक रस हो जाए। और एक रस स्थिति का मतलब ये नहीं है कि रफ्तार एक जैसी हो, स्पीड एक जैसी हो, नो। एक रस स्थिति जहां मेरी उड़ती कला में वृद्धि होती जाए, जहां मेरी स्थिति में वृद्धि होती जाए, वो एक रस स्थिति है। एक और दूसरा पहलू है एक रस स्थिति का, वो पहलू क्या है कि मेरी स्थिति इतनी स्टेबल है, मेरी स्थिति इतनी स्थिर है कि जो बाहरी परिवर्तन है, जो वायुमंडल में परिवर्तन हो रहे हैं, जो परिस्थिति में हलचल हो रही है या जो परिस्थिति में बदलाव आ रहे हैं, उनका प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ रहा है, वो भी एक रस स्थिति है। ये भी इसका एक पहलू है। एक है मेरी स्थिति में वृद्धि होना, उड़ती कला में वृद्धि होना, और एक है कि कोई भी हलचल मेरी स्थिति के ऊपर प्रभाव ना डाले, ऐसी एक रस स्थिति मेरी हो जाए। तो वो स्थिति एक रस बनाने के लिए तो हमें जरूर उस एकाग्रता का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। हम सभी जानते हैं कि एकाग्रता होनी जरूरी है, होनी जरूरी है ना, होनी जरूरी है ना, सब समझते हैं ना। लेकिन सवाल ये उठता है, सवाल पूछूं आपसे, जब हम याद में बैठते हैं, मैं अपने से प्रॉमिस किया आज मैं एक घंटा योग करूंगी या एक घंटा योग करूंगा, है ना, तो क्या मेरी उस समय बुद्धि एकाग्र होती है? ये सवाल कहने और पूछने का, कोई संगठन में कहने और पूछने की बात नहीं है, ये अपने आप से पूछने का सवाल है। क्योंकि पुरुषार्थ मेरा अपना है। आज सवेरे भी बाबा ने मुरली में कहा बच्चे पुरुषार्थ पर ध्यान दो, था ना बाबा के आज की मुरली में, पुरुषार्थ करने में दिल शिकस्त नहीं हो जाओ। तो ये मेरा सवाल मेरे अपने आप से है। भक्ति माना क्या होता है? हम ये समझते हैं भक्ति माना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मा अपना अवलोकन, अपने आप को खुद देखती है। हम दूसरों को देखने नहीं आते हैं, हम अपने को देखने आते हैं। आप में से जो ज्ञान में चलने वाले हैं, कई बड़े पुराने भी होंगे इसमें से, कोई थोड़े नए भी होंगे। अब आप देखिए, हम चलते चलते बढ़ रहे हैं, मैंने कितनी मंजिल तय कर ली है और कितनी तय करनी बाकी है, ये मुझे देखना है। तो मुझे मेरी चेकिंग खुद ही खुद करनी है। और मधुवन इतना अच्छा दर्पण है जहां हमको बहुत इजीली महसूस होता है कि मेरी स्थिति कहां तक पहुंची है और मुझे अपनी स्थिति को कहां तक ले जाना है और उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है। वो विधियां जब हम भट्टी में आते हैं, क्लासेस सुनते हैं, योग करते हैं, बाबा की मुरली सुनते हैं, उसमें हमको मिलती हैं। अब देखिए, कभी कभी क्या तो हो सकता है कि योग में बैठे बैठे या मुरली सुनते वक्त हमारी बुद्धि पूरी एकाग्र नहीं होती। हो सकता है हमारे मन में विचार वही चलते हों जो जिम्मेवारियों से संबंधित हैं, जो सेवाओं से संबंधित हैं। हो सकता है उन्हीं से वही विचार चलते हों, लेकिन उस समय के लिए तो वो विचार वेस्ट विचार हैं। उस समय के लिए तो वो जरूरी विचार नहीं है ना। तो मैंने अपना समय बाबा के साथ अपनी मन बुद्धि को टिकाने की बजाय मैंने अपना समय कहां लगाया मैंने अपना समय तो मेरा वेस्ट हो गया कि जो मुझे सोचना नहीं था वो मैं सोच रही हूं। तो अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एकाग्रता की शक्ति को हम अपने जीवन में धारण कैसे करें। तो आज हम आपको कुछ बातें बताएंगे कि एकाग्रता को लाने के लिए हमें क्या क्या जरूरी है। जैसे डॉक्टर दवाई देता है उसके साथ परहेज भी बतलाता है, तो क्या परहेज हमें चाहिए, आज इन्हीं कुछ बातों पर हम थोड़ा सा आपस में शेयर करेंगे। और कंसंट्रेशन पावर लाने के लिए, एकाग्रता की शक्ति लाने के लिए हम समझते हैं हमें तीन पावर्स की आवश्यकता है। एक है कंट्रोलिंग पावर, दूसरा है रूलिंग पावर और तीसरा है साइलेंस पावर। ये तीन शक्तियों की आवश्यकता है तभी हम एकाग्र अपने आप को कर सकते हैं। अब कंट्रोलिंग पावर किस पर, किसको कंट्रोल करना है मुझे, स्वयं पर किसको, अपनी मन बुद्धि को, जैसे अपने संकल्पों को। जैसे अब आप देखिए स्थूल कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल करना, आपने बहुत बार देखा होगा कभी कभी जब भाई बहन मुरली सुनते हैं तो मुरली सुनते सुनते कोई आया कोई गया, कोई आया फट से देखेंगे कौन आया, है ना, होता है ना ऐसे, तो क्यों मेरा ध्यान जाता है। अच्छा कुछ आवाज आई तुरंत हमारा ध्यान जाएगा, जबकि जो रिस्पॉन्सिबल है उसकी जवाबदारी है लेकिन हमारा ध्यान जाता है। अच्छा कुछ क्या होता है, मुरली सुनते सुनते हाथ पांव हिलाते रहते हैं, क्या ये योगी की निशानी है हाथ पांव हिलाना, इसका मतलब क्या है, अभी मेरा स्थूल कर्मेंद्रियों पर भी कंट्रोल नहीं है। स्थूल कर्मेंद्रियों में सब आ जाता है, आप सब अच्छी तरह से समझते हैं, हाथ पर कंट्रोल, कान पर कंट्रोल, कहते नहीं मैंने कोई बात नहीं सुनी लेकिन वो मेरे को सुना के चला गया। वो क्यों सुना के चला गया, हमारी गुलजार दादी हमेशा कहा करती थी कि कोई आपके कान कचरे के डिब्बे हैं जो कचरा डाल के चला गया उसके अंदर, हमेशा गुलजार दादी ये बात कहा करती थी। हम किसी को कान देते हैं यानी मेरा अपनी कान रूपी कर्मेंद्रिय पर कंट्रोल नहीं है, तो वो कंट्रोल करना जरूरी है ना। हम कहते हैं क्योंकि काफी हद तक जब हम राजयोगी बन जाते हैं, योग अभ्यास करना शुरू करते हैं, हमारा काफी चीजों पर कंट्रोल हो जाता है, अपनी बहुत सारी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल होता है, लेकिन जो सूक्ष्म बातें बाबा हमें बताते हैं उन पर भी तो ध्यान देना जरूरी है। और इसके साथ साथ जैसे आपने कहा मन बुद्धि संस्कार पर कंट्रोल, ये भी बहुत जरूरी है। ये हमारी सूक्ष्म शक्तियां हैं। आप देखिए सफल राजा कौन बनता है, जो राजा होता है वो सफल राजा कौन होता है, जिसका अपनी प्रजा के ऊपर शासन होता है, अधिकार होता है। मैं आत्मा कौन हूं, मैं भी तो राजा हूं ना, ये कर्मेंद्रियां तो मेरी प्रजा हैं, इन पर मेरा पूरा अधिकार होना चाहिए, चाहे वो सूक्ष्म हो चाहे वो स्थूल हो। तो इसी, और लेकिन हुआ क्या, द्वापर से क्या हुआ, द्वापर से हम अपनी कर्मेंद्रियों के गुलाम बन गए, थे तो हम राजा लेकिन बन गए गुलाम। लेकिन अभी फिर से हमें राजा बनने की आवश्यकता है, आत्मा राजा है और कर्मेंद्रियां उसकी कर्मचारी हैं। मुझे कभी कभी वो गीत याद आता है, एक हमारा बड़ा अच्छा गीत है, हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, मस्तक सिंहासन पर हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं, कर्मेंद्रिया कर्मचारी हमारी, और आगे की लाइन क्या है उसकी, भ्रिकुटी बीच, हाँ भ्रिकुटी बीच दरबार अपना लगाएं, ये हमारी स्थिति होनी चाहिए, है ना। इस गीत को सुनना, बड़ा सुंदर गीत है ये वाला। तो मन बुद्धि पर कंसोल माना क्या, मन बुद्धि पर यानी मन में कोई भी जो अनवांटेड थॉट्स हैं, अननेसेसरी थॉट्स हैं, जो मुझे जरूरत ही नहीं है, मुझे चाहिए ही नहीं, वो मन में क्यों चले, जिनका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। देखिए व्यर्थ, एक जनरल हम व्यर्थ को समझते हैं कि व्यर्थ क्या है, लेकिन अनवांटेड, अनरिक्वायर्ड, अननेसेसरी थॉट्स, हम लंबी लंबी सोच करते हैं तो मन तो में मन की शक्ति तो मेरी वेस्ट हो रही है ना। ये मुझे कंट्रोल तो चाहिए ना मन के ऊपर। इसी प्रकार यानी मैं अपने मन को जहां ले जाना चाहूं, जो मुझे सोचना है, जिस समय जो सोचना है मैं वही सोचूं, इसके अलावा कुछ नहीं सोचूं। और अगर मन सोचने लगे तो जैसे वो हम लोग बचपन में गेम खेलते थे ना, एक स्टैचू का, शायद आप लोगों ने कईयों ने खेला होगा, पहले ना बच्चे बचपन में हम लोग खेल खेलते थे, कूदते थे सारे, कूदेंगे कूदेंगे, और कूदने के बाद जो लीडर होगा वो कहेगा स्टैचू, तो आप जिस पोज में है ना उसी पोज में आपको खड़े हो जाना है, स्टैचू बन जाना है, और अगर हिल गए तो आप आउट। ऐसे होता था वो गेम। ऐसे ही हम मन को कहें स्टॉप, ये आदत डालें। और यदि आप अपनी स्थिति में, जैसे आत्मा राजा है और आत्मा राजा बनकर मन को कह रही है स्टॉप, आप करके देखना, तो मन स्टॉप होगा। इनिशियली थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा, हो सकता है कुछ सेकंड्स लग जाएं या कुछ मिनट्स लग जाएं, लेकिन मन को नहीं, स्टॉप, ये तुझे नहीं सोचना है। जैसे मन अलग है, आत्मा राजा अलग है, और आत्मा राजा उस मन मंत्री को ये ऑर्डर कर रहा है स्टॉप, अभी तू स्टॉप हो जा, ये तेरा काम नहीं है। ये छोटी छोटी युक्तियां हमें अपनानी पड़ेंगी, तब मन एकाग्र होगा। और बुद्धि की एकाग्रता, मैं बुद्धि को जहां ले जाना चाहूं वही मेरी बुद्धि जाए, दूसरी जगह बुद्धि जाए नहीं, बुद्धि भटके क्यों। इसी प्रकार संस्कार, जो संस्कार मुझे इमर्ज करना है, जो बाबा ने मुझे ईश्वरीय संस्कार दिए हैं और ये मुझे कहा है तुमको दैवी संस्कार बनाने हैं, तो वही दैवी संस्कार मुझे बनाने ना, उन संस्कारों पर भी कंट्रोल होना। हम कहते हैं फलाने ने गलत कहा तब मुझे क्रोध आया, अदरवाइज मुझे क्रोध नहीं आता है, लेकिन क्रोध तो पुराना संस्कार है ना, उस पुराने संस्कार को मैंने इमर्ज होने क्यों दिया, मुझे तो अपने संस्कार को बदलना है ना, और संस्कार को बदल के मुझे नया संसार का निर्माण करना है, तो संस्कारों में परिवर्तन तो लाना पड़ेगा ना। मुझे ये भी एक गुलजार दादी की बात याद आती है, मैं कुछ दिनों पहले ये गुलजार दादी की क्लास पढ़ रही थी जिसमें दादी ने ये बात कही थी। दादी ने कहा, आप कभी कहते हैं कि हम सत्य कह रहे हैं, सामने वाला गलत बोल रहा है, तो दादी ने कहा था कि वो गलत कह रहा है, बिल्कुल ठीक, आप सत्य कह रहे हैं वो भी ठीक, लेकिन यदि आप क्रोध करके अपनी सत्य बात को सिद्ध करते हैं तो आपकी बात मानेगा कौन। और उसमें फिर दादी ने बहुत अच्छी बात कही, दादी ने कहा कि सत्य को सिद्ध करने में कभी कभी समय लगता है, सहन करना पड़ता है। और अपना यज्ञ का मिसाल दिया दादियों ने, दादी ने कहा कि जब यज्ञ में बैगरी पार्ट आया तो जो हमने, या कई बातें आई तो हमने सहन किया, वो सहन करने की शक्ति हमारे अंदर आ गई, उस सहन करने की शक्ति ने हमें बहुत कुछ दिया, ऐसे कुछ दादी के शब्द हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे हैं। तो कहने का भाव ये है कि अगर मुझे अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है यदि अभी संगम युग पर संस्कारों को परिवर्तन नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अभी भी यदि हम संस्कारों के वश हो जाएंगे तो एकाग्रता कहां से आएगी और योगी जीवन कैसे बनेगा, वो एक रस स्थिति का निर्माण कैसे होगा? इसीलिए मन बुद्धि और संस्कार पर मेरा कंट्रोल हो, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ डिसिप्लिन। जब सेल्फ कंट्रोल होगा, स्वयं पर हमारा कंट्रोल होगा, जब स्वयं पर संयम होगा, तभी तो हम सेल्फ रूलर बनेंगे, तभी तो हम शासन कर सकेंगे, हमारे अंदर वो रूलिंग पावर आएगी। तो इसीलिए हमारी अभी मनोस्थिति कैसी होनी चाहिए कि हम हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा कंट्रोलिंग पावर को और रूलिंग पावर को बढ़ाएं अभ्यास के द्वारा। छोटे छोटे इसके अंदर हम तरीके अपनाएं, जैसे हमने एक तरीका आपको अभी बताया। और इसके लिए क्या चाहिए? साइलेंस पावर। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि साइलेंस की शक्ति से एकाग्रता की शक्ति आएगी। ये भी बाबा की अव्यक्त मुरली के महावाक्य है, लगभग 81 की मुरली है ये बाबा के, जिसमें बाबा ने ये शब्द कहे हैं। अब साइलेंस पावर क्या? जितना हम साइलेंस में बैठते हैं उतना हमारी एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है। अब वो साइलेंस भी कौन सी? ऐसा नहीं कि हम मन से हम कुछ मुख से बोल ही नहीं रहे हैं, कोई आज से कुछ जवाब पूछ रहा, कुछ पूछ रहा है और आप कहते हैं मैं तो चुप हूं, मुझे साइलेंस में रहना है। जैसे कभी कभी कोई जिस दिन मौन रखते हैं ना, क्लास में टीचर मुरली सुन रहे होते हैं, वो टीचर पूछती है प्रश्न का जवाब, तो साइलेंस में रहते हैं क्योंकि वो अपना बैच दिखा देते हैं हम मौन में हैं। लेकिन मुरली के समय में प्रश्न का जवाब देना, वो कोई साइलेंस पावर टूटती नहीं है उससे, तो वो बोली साइलेंस की बात नहीं है। लेकिन एक लेवल तक वो भी चाहिए, जिसके लिए बाबा ने हमें स्लोगन दिया है कम बोलो धीरे बोलो मीठा बोलो। अब कम बोलो माना आवश्यकता प्रमाण बोलो। आपने देखा होगा जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो फालतू जरूर बोलते हैं, आप कभी भी देख लेना, इस चीज को आप नोटिस कर लेना। जो लोग भी ज्यादा बोलते हैं वो लोग व्यर्थ जरूर बोलते हैं, इसलिए हमको जितनी आवश्यकता होती है उतनी बोल बोले। दूसरा धीरे बोलो। हमारे बोलने में कैसा होता है? थोड़ा स्लो। हम अभ्यास करें। कभी 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 हम बहुत जोर से बोलते हैं ना, अगर समझो मुझे मालूम है मेरा आवाज जोर का है तो मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए कि थोड़ा धीरे बोलना है, ये भी अभ्यास करना चाहिए। और तीसरा कम बोलो धीरे बोलो मीठा बोलो। तो वाणी में क्या होनी चाहिए? कहते ये ऐसे बोलते हैं जैसे वाणी के अंदर गुड़ डाल दिया हो, मीठा डाल दिया हो, इतना मीठा बोलते हैं। कईयों का बोल बड़ा मधुर होता है ना, तो वाणी में मिठास हो, वाणी में सॉफ्टनेस हो, विनम्रता हो, और वाणी कैसी हो? सुखदायी, दूसरों को सुख देने वाली, ये भी चाहिए हमें। कम बोलना धीरे बोलना मीठा बोलना ये भी ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जो हम साइलेंस की बात करते हैं, मन मेरा साइलेंट हो, नहीं तो मन क्या होता है, वो मंकी की माफिक बंदर की माफिक उछलता रहता है। इस पर बहुत सारे लेखकों ने बड़ी कई किताबें लिखी हैं, क्योंकि बंदर चंचल होता है ना बहुत। आपने कभी भी देखा होगा बंदर कभी भी स्थिर बैठता नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह, हम लोग नीचे से ऊपर आते ना, आपने रास्ते में देखा होगा बंदरों को ना बैठे रहते हैं, वो कभी आपने देखा कोई स्थिर बैठा हो बंदर? वो उछलते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो मन भी जो है ना वो बंदर की तरह एकदम चंचलता करता है, अस्थिर हो जाता है, यहां वहां भागता रहता है। तो हमें क्या करना है, अगर इस मन को कंट्रोल करना है, यानी अगर मुझे साइलेंस पावर का अभ्यास करना है, उसके लिए चाहिए एकांतवासी बनना, बहुत जरूरी है। अभी आप कहेंगे कि हमें तो एकांत का समय मिलता ही नहीं, एकांत में बैठने का अभ्यास कैसे करें, सुबह से लेकर रात तक कुछ ना कुछ कारोबार चलती रहती है, और घरों में रहते हैं, कई प्रकार के कामकाज होते हैं, कई प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जिनको हमें पूरा करना है। और ये एकांतवासी बनना, कौन सा एकांतवासी बनना है, कोई अलग कमरे में बैठ के, अलग स्थान पे बैठ के एकांतवासी बनने की बात नहीं कह रही हूँ, क्योंकि जैसा समय है उसी अनुसार हमें कुछ विधियां अपनानी पड़ेंगी। और वो विधियां क्या हैं, वो हम एक और आपको बात बताते हैं, जिसको हम कहते हैं मिनी ब्रेक्स, जिसको बाबा ने हमें बहुत समय से अभ्यास कराया था। वो बाबा ने अभ्यास कराया था ट्रैफिक कंट्रोल का। अब यहां हम बात कर रहे हैं एकांत कौन सा, बाहर की आकर्षण से एकांत, बाहर के कारोबार से एकांत, बाहर की हलचल से एकांत, बाहर के वातावरण से एकांत, एक के अंत में खो जाना एकांतवासी बनना। जैसे मैंने कहा कि कई कहते हैं हमको टाइम नहीं मिलता है, तो कोई बात नहीं, नहीं मिलता है, आधा घंटा भी टाइम नहीं मिलता, 15 मिनट भी नहीं मिलता है, अच्छा 1 मिनट तो मिलता है, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स, है ना, मुझे 1 मिनट का मिलता है, मैं उस 1 मिनट में एकांतवासी बनूं। आप कहेंगे कैसे, उस 1 मिनट में कोई बहुत पावरफुल स्थिति में स्वयं को स्थित कर दो, 1 मिनट के लिए, इसको हमने नाम दिया मिनी ब्रेक्स, छोटी छोटी ब्रेक लेना। मैं बहुत बिजी हूं, खाना मैंने चढ़ाया है, मैं बना रही हूं खाना, मुझे मालूम है 5 मिनट लगेंगे, मैं 1 मिनट आके 1 मिनट के लिए मैं उस पावरफुल स्थिति में स्थित अपने आप को करती हूँ, लाइट हाउस की स्थिति, माइट हाउस की स्थिति, फरिश्तेपन की स्थिति, बीज रूप की स्थिति, या उस दिन जो बाबा ने मुरली में कहा है कोई बात, वो स्थिति, और नहीं कुछ समझो, ये भी नहीं होता है, एक बाबा मेरे सामने और मैं एक टिक उस बाबा को ही देख रही हूँ, समझो मेरे से नहीं हो रहा है, वो 1 मिनट भी नहीं हो रहा, बाबा का चित्र सामने है, या बाबा को विजुअलाइज करो और सामने देखते जैसे मैं बाबा को ही देख रही हूं, बाबा मेरे सामने, 1 मिनट के लिए करो, आप करके देखो, अभी अभी करेंगे, अभी अभी करो, अभी तो बहुत ईजी है, 1 मिनट के लिए। एक दूसरा संकल्प ना आए, अपने आप को चेक करना, क्या मैं 1 मिनट के लिए अपने आप को उस स्थिति में स्थित कर सकता हूं, लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति, स्थित हो पाए। हाँ जी, आप शिव बाबा भी कह सकते हैं, आप बाप दादा भी कह सकते हैं। बाबा ने जो साकार उस दिन मुरली में बड़ा अच्छा कहा था ना, बाबा कहते हैं तो पहले तो निराकार याद आता है, फिर निराकार के साथ साकार है, और साकार में फिर निराकार है। ये बाबा के 3-4 दिन पहले की मुरली है। तो किसी को भी आप करो कह सकते हो, जो आपको इजी हो। अव्यक्त बाप दादा को सामने ले आओ, बिंदु को सामने ले आओ, जिस पर आप अपने आप को एकाग्र कर सकते हैं करो। ये अभ्यास करना चाहिए। बाबा के कमरे में बैठना है ना, समझो मुझसे एकाग्र नहीं होता, बस ये संकल्प कर लो मुझे सिर्फ बाबा की दृष्टि लेनी है, दैट्स ऑल। बस उन दृष्टि को ही देखना है, मुझे बाबा के यहां ही देखना है। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, वृद्धि होगी एकाग्रता में। आप करके देखिएगा और यहीं से शुरुआत कीजिएगा इसका। और दूसरा मैं इसका आपको एक बात बताऊंगी। अब देखिए, एक मिनट का टाइम किसको नहीं मिलता। हमने आपको एग्जांपल दिया, इसी प्रकार जो जॉब्स करते हैं, जो अपने बिजनेस में होते हैं, एक मिनट तो निकाल सकते हैं ना हम बीच में कभी भी। और दूसरा पहलू मैं आपको ये बताऊंगी कि आप एक मास में या दो मास में, एक मास होगा तो ज्यादा बेटर है, एक मास में एक दिन, कोई जो दिन आपको मिले, दो घंटे जाके योग का अभ्यास करो बाबा के कमरे में बैठकर। पहले से ही अपनी जो टीचर निमित बहन है उनसे आप परमिशन ले लो, उनको बता दो, ये अभ्यास करना शुरू करो। एक होता है भट्टियां जो अरेंज होती हैं, उसमें हम जाते हैं, संगठन में बैठते हैं, लेकिन एक है कि मैंने स्पेशली मेरे लिए टाइम निकाला और टाइम निकाल के मैं जाके वहां पर और अपनी दीदी से, निमित जो दीदी है उनसे परमिशन लेके कि आज मैं दीदी जो है दो घंटे अभ्यास करने आऊंगा या मैं दो घंटे अभ्यास करूंगी, तो मैं कर सकती हूँ, तो वहां जाके अभ्यास करो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और जितना आप इस प्रकार से अभ्यास करेंगे, आपका एकांत का अनुभव आपकी एकाग्रता को बढ़ाएगा। जैसे आप देखते हैं, जो हमने स्थिति की बात की कि जैसे शरीर को बिठाने के लिए स्थूल स्थान होता है ना, इसी प्रकार ये जो स्थितियां हैं, ये जो हमारी मन बुद्धि को बिठाने का स्थान जो है, ये श्रेष्ठ स्थितियां हैं। जब वो श्रेष्ठ स्थिति बन जाएगी, मन बुद्धि उसमें टिक जाएगा और एकाग्रता हमारी हो जाएगी। तो ऐसे एकांत का अभ्यास करते करते हम क्या करेंगे, जो हम जल्दी जल्दी परवश हो जाते हैं, हम उसको परिवर्तन कर पाएंगे। और इसके लिए परहेज क्या है, परहेज है व्यर्थ संकल्प। इन व्यर्थ संकल्पों की परहेज करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको आदत पड़ गई है व्यर्थ संकल्प चलाने की। जैसे हमने पहले भी बताया कि अगर व्यर्थ चलता है तो वो व्यक्ति बोलता रहेगा, शांत रह नहीं सकता है। जैसे छोटे बच्चे चंचल होते हैं ना, बहुत चंचलता करते हैं। मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास दो बच्चे आते हैं, एक बच्ची है एक बच्चा है, दोनों। वो आते हैं मतलब एक मिनट तो क्या, एक शायद आधा मिनट भी वो स्थिर बैठ नहीं सकते। उनकी माँ दोनों की परेशान हो जाती है, और समझो सेंटर पर उसको आने का दिल करता है, बच्चे को छोड़ के कहाँ आए, वो हिलती ही रहेगी, हिलती ही रहेगी। ऐसे ही जब व्यर्थ संकल्प चलने शुरू होते हैं, वो चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, क्योंकि स्पीड बड़ी फास्ट होती है व्यर्थ संकल्पों की। जैसे जब हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है ना, पल्स फास्ट चलती है, इसी प्रकार जब मन और बुद्धि एकाग्र नहीं होते हैं तो हमारे व्यर्थ संकल्प बहुत फास्ट चलते हैं। तो उनको कंट्रोल तो मुझे करना है ना। जब हम शुरू शुरू में ज्ञान में चलते हैं तो हमको बड़ा नशा रहता है, बस बाबा और मैं, बड़ी अच्छी अवस्था लगती है। और जब उसके बाद धीरे धीरे ब्राह्मण परिवार में, और जब सर्कमस्टेंसेस आते हैं हमारे सामने, परिस्थितियां आती हैं, हम आगे बढ़ते हैं, तो अंदर में क्या होता है, अंदर में व्यर्थ संकल्प जो है वो नाचना शुरू कर देते हैं बंदर की माफिक। और फिर क्या कहते हैं, पहले तो हमको पता ही नहीं था, हम तो जैसे बुद्धू थे, अभी हमको नॉलेज मिली, अभी हम नॉलेज फुल हो गए। अब ये अपने आप से पूछने का है, अभी नॉलेज फुल हो गए क्या? अभी हम क्या हुए? क्या या हमने अपनी बुद्धि को बंदर समान बना लिया? सोचो, क्योंकि यहां वहां की बातें सुनते ना ब्राह्मण परिवार में, व्यर्थ का कारण ही है परचिंतन, पर दर्शन। आंख ने देखा, कान ने सुना, पर चिंतन करना, पर दर्शन करना तो व्यर्थ चलेगा ही ना हमारा। तो क्यों हम दूसरों को देखें और अपने व्यर्थ संकल्प चलाएं? क्यों हम ऐसी बातें सुने जिससे हमारा व्यर्थ संकल्प चले? तो ऐसा नहीं कभी हमें सोचना चाहिए, अभी हमको मालूम चला, अभी हम नॉलेजफुल हो गए। अभी नॉलेजफुल नहीं हो गए, पहले नॉलेजफुल थे, अभी बुद्धू हो गए। ऐसे ऐसे कहेंगे ना, हम कहते हैं जैसे कि हम बुद्धू थे, लेकिन जैसे कि बुद्धू तो हम अभी बन गए, पहले थोड़ी ना थे हम कोई। तो इसीलिए ये व्यर्थ संकल्प जो है, इसका फाटक कौन सा है, इसका गेट कौन सा है? इसका गेट कौन सा है व्यर्थ संकल्पों का? क्यों, क्या, कैसे? और हम ये देख रहे हैं जैसे जैसे समय समीप आ रहा है, वैसे वैसे यज्ञ में भी अनेक प्रकार की परिस्थितियां बदल रही हैं। जो आज से कुछ साल पहले था वो आज नहीं है, है ना? जो पुराने हैं वो अनुभव करते होंगे इस चीज का, और नेचुरल है, समय अनुसार चेंज तो आना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, वो होना है। और हम अपना क्यों, क्या, कैसे चलाते रहे, तो ये इसके दरवाजे हैं ना, क्यों, क्या। और जब इस और ये क्यों, क्या के दरवाजे ये जो चलते हैं, संकल्प चलते हैं, हमारी खुशी को गायब करते हैं। और रिजल्ट क्या होता है कि हमने खुद ही व्यर्थ संकल्पों की रचना की, और रचना करके हम खुद ही मजबूर हो जाते हैं। कहते हैं, मैं तो बिल्कुल मजबूर हो गया, अपने संकल्पों की रचना से खुद ही मजबूर हो गए। जैसे मकड़ी अपना जाला बुन के खुद ही उस मकड़ी के जाल में, अपने ही जाले में वो फंस जाती है, और स्थिति कैसी हो जाती है? हम कहते हैं हम तो पुरुषार्थी हैं, जैसे वो तोता होता है ना, नल पर बैठता है, गंगा राम तू नल पर बैठ मत बैठ, बैठा है नल के ऊपर और कह रहा है गंगा राम तू नल पर मत बैठ। इसी प्रकार हम क्या कहते हैं, मैं पुरुषार्थी हूं, लेकिन प्रैक्टिकल में तो पुरुषार्थ है ही नहीं। समझ रहे हैं अपने को पुरुषार्थी, लेकिन पुरुषार्थ मम्मा क्या करती थी, मम्मा क्या कहा करती थी? पुरुषार्थी से यदि एक बार कोई गलती हो गई, वो दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए तो मम्मा आगे चली गई। तो ऐसा हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए ना। तो योगी जीवन की इमारत मजबूत तब होगी जब एकाग्रता की शक्ति होगी। जैसे आप बिल्डिंग का फाउंडेशन मिट्टी के ढेर पे बना दो, उसके ऊपर 6 मंजिला बिल्डिंग खड़ा कर दो, या रेत की बना दो, 6 मंजिला बिल्डिंग खड़ा कर दो उसके ऊपर, तो बिल्डिंग कब तक खड़ी रहेगी उसके ऊपर? या खड़ी होगी भी या नहीं खड़ी होगी, क्योंकि फाउंडेशन मजबूत नहीं है ना। तो इसी प्रकार योगी जीवन की ये जो इमारत है, ये जो बिल्डिंग है, ये कब मजबूत होगी? जब एकाग्रता की शक्ति होगी। और व्यर्थ संकल्पों को बंद करने का दरवाजा है 3 बिंदी। बाबा ने हमें 3 बिंदियों का जो तिलक दिया है, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, और सबसे बड़ी बिंदी है जो सबसे डिफिकल्ट है। गलत है सही है? सबसे डिफिकल्ट बिंदी लगाना कौन सी है? जामा। उस बिंदी को लगाने में गड़बड़ हो जाती है कभी कभी, है ना? वो बिंदी लगाना, बहुत समय से एक विचार हमारा चल रहा है, और वो विचार मैं जस्ट आपके साथ शेयर करती हूं कि जब बाबा कहते हैं आत्मा का अभ्यास करो, आत्मा बिंदी देखो, मैं आत्मा बिंदी देख रही हूं, लेकिन सब डिफरेंट है कार्य करने में। अच्छा, तो अब वो सबको अलग अलग देखते हुए, ये भाई है ये बहन है, मैं तो आत्मा बिंदी देख रही हूं ना, तो मुझे सब बिंदी नजर आने चाहिए, लेकिन फिर भी कर्म करने के समय ये ख्याल तो है ना कि ये भाई है ये बहन है, इसको ये सेवा दी जानी चाहिए, इसको ये सेवा दी जानी चाहिए। तो इसीलिए बाबा ने हमें एक बात और पक्की कराई, इस ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, बाबा ने बात पक्की कराई ना, तो इसलिए ये ड्रामा की बिंदी लगाना ये बहुत जरूरी है। आत्मा बिंदी तो लग जाती है, परमात्मा बिंदी भी लग जाती है, लेकिन आत्मा की बिंदी लगाएं, ये ड्रामा की बिंदी लगाएं, तो हम अपने आप को एकाग्र कर सकते हैं। और लास्ट बात, एकाग्रता में जो विघ्न बनते हैं, एकाग्रता में विघ्न कौन बनते हैं, दो चीजें, एक चाहना और एक चिंता, दो चीजें। एक किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, चाह हटी चिंता मिटी, मनड़ा बेपरवा। चाह हटी चिंता मिटी मनड़ा बेपरवा, जिसको कुछ ना चाहिए वो शाहों का शाह। तो हमें तो जब बाबा मिल गया, हमारे मुख से क्या निकला, साकार बाबा के मुख से क्या निकला था, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा, है ना? अभी हमने जो पाना था वो पा लिया या बाकी अभी कुछ पाना? जब सब कुछ पा लिया तो अप्राप्ति कहां से है, चाहना किस बात की है। सूक्ष्म में भी यदि, जिसको बाबा नाम मान शान कहते हैं, वो भी यदि चाहना है और वो पूरी नहीं हुई तो चिंता होगी, कनेक्टेड है ये आपस में, चाहना और चिंता। जो मुझे नहीं मिला मैं, और उसको पाने के लिए फिर मन में चिंता भी होती है, और उसको पाने के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं। आप इस पर विचार कीजिएगा, तो कैसे चाहना और चिंता मेरी एकाग्रता में मेरे लिए विघ्न बन जाते हैं। इनको भी मुझे खत्म करना है, और इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे आप स्वयं को देखो, दूसरों को नहीं देखो, दूसरे को क्या मिला नहीं, और मुझे क्या मिला नहीं, मुझे सब कुछ मिल गया। कोई देखो इतनी सी चीज पाके भी ना एकदम खुश रहते हैं, संतुष्ट होते हैं, कोई इतना सारा भी उनको मिल जाता है ना तो भी उनको बिल्कुल जैसे संतुष्टता होती ही नहीं है, ये भी चाहिए ये भी चाहिए। बाबा कहते दूसरों की नहीं देखो, इसलिए बाबा ने कभी एक मुरली में कहा था कि बच्चों बच्चे बाबा देखते हैं बच्चों की दूर की नजर जो है ना वो तेज हो गई है, और पास की नजर जो है ना वो कमजोर हो गई है। और पास की नजर माना अपने को देखना, दूर की नजर माना दूसरे को देखना। और फिर क्या होता है, अपनी कमियां नहीं दिखाई देती, दूसरों की कमियां दिखाई देती हैं। और फिर क्या होता है, चिंता और बढ़ती है, चाहना और बढ़ती है। वो जैसे कहते हैं ना कि ब्रह्मा जी ने एक एक व्यक्ति था, ब्रह्मा जी के पास गया और ब्रह्मा उसको कहा कि मुझे कुछ आप दो, तो उन्होंने उसको दो थैलियां दी, भाई एक थैली में तुम ये थैली जो है ये आगे रखना और ये थैली जो है हमेशा पीछे रखना। अब वो जब आया वापिस तो वो भूल गया कि कौन सी थैली आगे रखनी थी कौन सी थैली पीछे रखनी थी, तो जो पीछे रखनी थी वो आगे हो गई, जो आगे रखनी थी वो पीछे हो गई, तो वो तो दुखी दुखी हो गया। तो क्यों, उसने क्या किया था, जो आगे रखनी थी वो थैली क्या थी, उसमें अपनी कमियां देखनी थी, और जो पीछे रखनी थी वो दूसरों की कमियों वाली थैली थी, तो उसने क्या किया, उसको रिवर्स कर दिया, दूसरों की कमियां देखना शुरू कर दिया, तो दुखी दुखी हो गया। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि बच्चे यदि हम दूसरों को देखते रहेंगे, तो आप सोचिए जब दूसरों को मैंने देखा उसको क्या मिला, नहीं मुझे क्या मिला, मुझे बाबा ने क्या दिया। हमारे पास 100 रीजंस हैं अपने आप को खुश करने के लिए 100 रीजंस है, बहुत सारी बातें हैं। कुछ नहीं है मेरे पास, खाने को 2 रोटी है, एक सिर पे छत है, पहनने को कपड़ा है, तो भी मैं खुश रह सकती हूं। इसीलिए जो मुझे मिला है उसमें हम संतुष्ट रहें, खुश रहें। और बाबा ने जो हमें ज्ञान, इतना ऊंचा ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के रमण में रमण करते रहें और अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करें। और जितना हम एकाग्र चित्त होंगे उतना हम एक रस अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। तब किसी की ताकत नहीं है कि जो मेरी स्थिति को हिला सके। थैंक यू। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश बहन जी, बहुत अच्छे से आपने एकाग्रता से एक रस के बारे में बताया, उसके लिए कैसे हम एकांतवासी बने, एकांत का अर्थ, उसके लिए साइलेंस की शक्ति, और इस स्थिति को बनाने के लिए विघ्न क्या आते हैं, इस स्थिति को बनाने के लिए जो गेट्स हैं तो वो कौन से हैं, बहुत ही गहनता से आपने बहुत अच्छी बातें रखी। निश्चित रूप से पहले ही दिन हमें एकांतवासी बन के एकाग्रता की शक्ति को बढ़ा करके एक रस स्थिति बनाने की शिक्षाएं प्राप्त हुई, समझ मिली, तो सभी हम बहुत ही अच्छे से 3 दिन की भट्टी का एक रस स्थिति से अनुभव करें। कोई भी बातों का असर हमारे पे न हो, एक बाबा की ही बातें, एक बाबा ही दिल दिमाग में हो, वो अनुभूति करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सभी को बाबा को बाप के रूप में पत्र लिखना है, समय पर आकर के 5 से 6 संगठित रूप में यहाँ योग करेंगे।
सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं, कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भृकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। जनता सारी राजा विराजी। तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाए। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुट बीच दरबार अपना सजाएं।